हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा ने बात को घुमाते हुए कहा, अंकल जी, राधिका और मैं एक ऑफिस में काम करते थे। इतनी जान पहचान और बोलचाल में इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन इंसान क्या चाहता है। वो राधिका के पिता भी उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अमन ने उन्हें कहा, आप जाइए, मैं अभी किसी को भेजता हूँ जो आपको सारा काम समझा देगा। उसके बाद अमन अपने केबिन की ओर जाने लगा और तारा को भी ले जाने लगा। वो तारा को एक मिनट के लिए भी कहीं अकेला नहीं छोड़ सकता था। तारा का केबिन भी अब ऊपर जाकर अमन के ठीक सामने वाला था, इसीलिए तारा भी अमन के पीछे पीछे चल पड़ी। ऑफिस के जितने भी लोग थे वे तारा और अमन को ही देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तारा के बारे में कुछ भी कह सके। राधिका के साथ जो हुआ था उसके बाद उन्हें एक विभत्सता सी होने लगी थी। राधिका की मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी, जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों ने सोच लिया था कि अब वे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। वहीं दूसरी ओर मल्लिका और अमित भी अपने अपने केबिन में चले गए थे। कल अमित ने जो मल्लिका के साथ किया था उसके बाद वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। कहीं ना कहीं वो किसी और औरत के जिस्म को पाना चाहता था। मल्लिका के साथ आधा अधूरा प्यार करने के बाद उसके दिलो दिमाग और उसके जिस्म को किसी और औरत के जिस्म की चाहत होने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो किसको अपना निशाना बनाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की पर गई। उस लड़की का नाम प्राची था, जो काफी सालों से अमन के लिए काम किया करती थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसका मतलब साफ था कि वो एक कुंवारी लड़की थी। अमित ने सोच लिया था कि अब वो प्राची को ही अपना निशाना बनाएगा और आज रात को ही उसे पूरी तरह से अपना बना लेगा। जब तक वो किसी औरत को अपने दिलो दिमाग और अपने जिस्म में नहीं संभाले तो तब तक उसे शांति नहीं मिलने वाली थी। प्राची एक मामूली सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन वो कुंवारी थी और हल्के से सांवले रंग की थी। दिखने में ठीक ठाक थी, कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अमित को तो इस वक्त अपने जिस्म की प्यास बुझानी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसे दिखती है, उसे तो इस वक्त सिर्फ औरतों के जिस्म से मतलब था। इसीलिए उसने प्राची को अपने वश में करने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा पूरे 20 मिनट ऑफिस के लिए लेट था। जैसे ही विक्रांत रंधावा सबसे पहले ऑफिस में आकर अमन के केबिन में गया, अमन ने उसे देखकर कहा, रे विक्रांत, तुम कल रात कहाँ गायब हो गए थे? और खीर खाने के बाद तुम्हारे दांतों में जो दर्द और खून निकलना शुरू हो गया था वो कैसा है अब? कोई दर्द नहीं हो रहा है तुम्हारे? तुम तो कुछ बताया भी नहीं, क्या तुम नाराज हो? अमन ने विक्रांत को देखते हुए कई सारे सवाल कर दिए थे। विक्रांत को समझ में नहीं आ रहा था कि अमन को वो किस तरह का जवाब दे। हालांकि वो अमन के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता था, लेकिन उसका कैरेक्टर, उस वक्त उसका रूप अमन के बचपन के दोस्त के रूप में था, इसलिए उसे जवाब देना ही था। विक्रांत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं अब ठीक हूँ। एक्चुअली कल मैं डॉक्टर के पास चला गया था क्योंकि मुझे जबड़े में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, तो वो जबरदस्ती करके मुझे अपने साथ ले गया, इसलिए पूरी रात मैं उसके साथ था। विक्रांत रंधावा ने एक झूठा सा बहाना अमन के सामने पेश कर दिया था। अमन ने ज्यादा पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। इस वक्त तो खुद उसके दिलो दिमाग में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि विक्रांत आ ही गया था तो अमन ने उसे कहना शुरू किया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली तुम जानते ही हो, वो विदेशी कॉरपोरेशन हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके लिए मुझे 3 से 4 मीटिंग्स लगातार उनके साथ अटेंड करनी होंगी और हो सकता है कि मेरी ये ट्रिप 7 से 8 दिन चलने वाली हो, तो मैं कल रात को ही विदेश के लिए निकल जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि तब तक मेरी एब्सेंट में तुम ऑफिस का सारा काम संभालोगे। और देखो, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ और तारा को भी मैं ज्यादा काम का प्रेशर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक तो वो माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि वो ऑफिस वगैरह के काम के झंझट में अपनी सेहत खराब कर ले। अमन तारा की फिक्र करते हुए कहा। अमन को तारा की फिक्र करता हुआ देख विक्रांत रंधावा तिलमिला उठा, लेकिन फिर जैसे उसने ये सुना कि अमन 7 से 8 दिनों के लिए विदेश जाने की बात बात कर रहा है तो उसके दिल में तितलियां उड़ने लगीं। उसे तारा को पाने का रास्ता नजर आने लगा था। वैसे भी अमन तारा और उसके बीच सबसे बड़ा रोड़ा था, और अब तो खुद वो रोड़ा बीच में से हटने के लिए तैयार था। ये बात विक्रांत रंधावा को बहुत पसंद आई। वो मुस्कुराने लगा और अपनी खुशी रोक नहीं पाया। वो एकदम से बोला, अच्छा कब जा रहे हो तुम? जैसे ही विक्रांत ने खुशी से एकदम से ये कहा, अमन हैरानी से देखने लगा। तब विक्रांत को समझ में आया कि उसने खुशी में क्या कह दिया। फिर वो अपनी बात संभालते हुए बोला, अरे अच्छा, लेकिन क्यों जा रहे हो तुम? तो पता है ना, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा, और वैसे भी मेरे पास केवल 10 दिन हैं। 10 दिन के बाद तो मैं भी वापस चला जाऊंगा, और तुमने 7 दिन जाने का प्लान भी बना लिया है। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। विक्रांत ने झूठ मूठ इंसानों की तरह मुंह बनाना शुरू कर दिया था। तब अमन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे भी जाना है, लेकिन मैं किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता हूँ ना। और तू जानता है ना, ये विदेशी डील हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये विदेशी कॉरपोरेशन वाले तो हर किसी को नहीं बुलाते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है तो मुझे लगता है हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो मैं तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी एब्सेंट में कंपनी संभाल लेना, अमन ने एक बार और उम्मीद भरी नजरों से विक्रांत रंधावा की ओर देखते हुए कहा। विक्रांत ने ऊपर से झूठ मूठ दुखी मन से कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब तुझे कौन रोक सकता है, और वैसे भी भला जाने वाले को किसी ने रोका है क्या आज तक? विक्रांत ने बड़ी ही गहरी बात कही, लेकिन अमन उस वक्त उसकी बात को नहीं समझ पाया। तभी विक्रांत ने मन ही मन में कहा, तो फिक्र मत कर, बेफिक्र होकर जा, मैं तेरे ऑफिस का भी ध्यान रख लूंगा, और साथ ही साथ तेरी बीवी का भी ध्यान रखूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है तेरी बीवी को तेरी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। विक्रांत मन ही मन में हंसने लगा। तब अमन ने उसे कहा, मैं तुझे सारी चीजें मेल कर देता हूँ, तो अच्छे से सब कुछ समझ लेना। 7 दिनों में जो जो काम होना है मैं तुझे सेंड कर देता हूँ, और साथ ही साथ मैंने कुछ फाइल्स तेरी टेबल पर रखवा दी हैं, तो प्लीज तू एक बार उन्हें भी चेक कर ले। अमन ने ऑफिस का जितना भी काम था वो 7 दिनों के लिए विक्रांत को हाथों में सौंप दिया था, और फिर खुद आराम से कुर्सी पर बैठकर तारा की ओर देखने लगा। तारा भी अपने केबिन में बैठी हुई अपने ऑफिस का काम निपटा रही थी, क्योंकि वो चाहे इंसानी रूप में या फिर अपनी तारा परी के रूप में, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि काम तो काम होता है, और जिस काम के लिए वे लोग यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले वो वाला काम करना अपनी प्राथमिकता समझा करती थी। वो चाहती तो अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके एक झटके में सारा काम खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ईमानदारी से काम करने का फैसला किया था।
अमन कुछ देर अपनी खूबसूरत बीवी तारा को देख रहा था। तारा का ध्यान उस वक्त सिर्फ अपने काम को खत्म करने में था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अमन 7 दिनों के लिए कहीं जाने वाले हैं, और वो इन 7 दिनों में ऑफिस का काम काफी हद तक खत्म कर लेना चाहती थी। वहीं विक्रांत रंधावा अपने केबिन में चला गया था, और केबिन में से जाकर वो तारा की ओर देखने लगा। तारा को इतनी लगन से काम करते हुए देखकर विक्रांत रंधावा काफी खुश हो रहा था। वो सोचने लगा कि अब तारा तो 24 घंटे उसके आसपास रहने वाली थी, और अब उसे संभालने वाला, उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। तभी विक्रांत ने मन ही मन में कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी तारा परी, मैं हूं ना तुम्हारा जन्मों जन्मों का प्यार, तुम्हारा जन्म जन्मों का साथी, राजा विक्रम सिंह उर्फ विक्रांत रंधावा, जो तुम्हें प्यार करने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार ही रहता है, और अब तो तेरा पति भी जाने वाला है, तो तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे इन 7 दिनों में तेरे पति की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगा। विक्रांत रंधावा ने तारा की ओर बड़ी ही गंदी तरह से देखते हुए कहा। वैसे भी वो हर हाल में तारा को पाना चाहता था, और अब तो तारा को पाने का रास्ता भी नजर आने लगा था। वो मन ही मन में इस बात को लेकर खुश हो गया था कि उसकी माँ ने आते ही अपनी काली विद्या शुरू कर दी थी, और उसके माँ की काली विद्या का ही असर था कि अमन अब पूरे 7 दिनों के लिए वहाँ से कहीं दूर जाने वाला था।